हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 34। इन अत्यंत ही मधुर और पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, इंद्रियस्येन्द्रियस्याथि राग द्वेष व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेष 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 व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। शब्दों का अर्थ देखिए। इंद्रियस्य अर्थात इंद्रिय का, इंद्रियस यार्थे अर्थात इंद्रिय विषयों में, राग द्वेष अर्थात आसक्ति तथा विरक्ति, व्यवस्थित यानी नियमों के अधीन स्थित होता है, तयोर्न वशम अर्थात तयो मन उनके ना होना कभी नहीं, वशम मन नियंत्रण में आगच्छित आना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों का अपने विषयों के प्रति राग और द्वेष स्वाभाविक है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को तयोर्न वशम आगच्छित उनके उनकी वश में नहीं आना चाहिए। तौ ह्यस्य परिपन्थिनो, तौ मन वे दोनों ही निश्चय ही अस्य यानी उसका परिपन्थिनो अर्थात अवरोधक। इसका मतलब यह हुआ कि इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे यानी कि इंद्रियों जो इंद्रियां हैं उनके जो विषय हैं, जैसे आंख का विषय देखना, कर्ण का विषय श्रवण करना और जुबान का विषय टेस्ट करना और त्वचा का विषय स्पर्श करना, ये जो विषय है ना उनके अंदर राग द्वेषो व्यवस्थित, राग अथवा द्वेष उसके अंदर होता ही है। जैसे कुछ चीजें देखने में हमें अच्छी लगती हैं और कुछ अच्छी लगती, कुछ सुनने में अच्छी लगती, किसी किसी की वॉइस सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमारे कान में घंटियां बज रही हैं, है ना, अच्छा लगता है, और किसी किसी की वॉइस सुनकर ऐसा लगता है जैसे पसंद ही नहीं लग रही, चुप हो जाए तो सही है, और कोई कोई चीज खाने में हमें अच्छी लगती है भले प्रसाद में मिला हो, कुछ ऐसा कोई प्रसाद आ जाता है फिर हमें ऐसा लगता है कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब हमारी इंद्रियों को अच्छा लगता, वास्तव में हमें उसका आदर होता है कि प्रसाद है या आध्यात्मिक है, पर मेरी भौतिक चेतना ऐसी है कि मैं उसको ग्रहण करना नहीं चाहती। तो राग और द्वेष स्वाभाविक है। कुछ लोग से बात करना अच्छा लगता है, कुछ लोग के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, और कोई और आ जाता है जो हमें पसंद नहीं लगता, तो ऐसा लगता है कि क्यों आया खाम का टाइम वेस्ट करने के लिए ना। तो राग और द्वेष जो इंद्रियों के विषय हैं, उनसे स्वाभाविक है। लेकिन भगवान यहाँ पर सलाह दे रहे तयोर्न वशमागच्छे, परंतु बुद्धिमानता क्या है कि हमें पूरा पूरा उनके वश में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? तयोर्न परिपंथिनः, क्योंकि वो आपके रास्ते की बाधा बनेंगे। कौन से रास्ते की बाधा बनेंगे? जो रास्ता भगवान ने 33 में बताया है उसमें। पहले अनुवाद देखिए, भगवान कहते हैं प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अवरोधक है। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपम् सग्रजातं सहगणरघुनाथवितं तं सजीवं साध्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपीका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरु भयस्य कृपा सिंधुभ्य एव च, पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं श्रीवासुदी गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद्गीता मास्ते की जय हो। श्लोक नंबर 33 में भगवान ने कहा, सदृशं चेष्ट सस्या प्रकृति ज्ञानवान अपि, यानी कि जो ज्ञानवान है, सदृशं चेष्टते स्वस्य, वो भी अपने गुणों के अनुसार कार्य करते हैं। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, तो सब अपनी प्रकृति के अनुसार। प्रकृति का क्या मतलब है? मतलब अपने स्वभाव के अनुसार यदि कार्य करते हैं तो फिर निग्रह किम करिष्यति, बला दमन करने से क्या होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यदि हमारी इच्छा हो रही है, हमारा स्वभाव है अपराध करने का, तो फिर हम अपने आप को अपराध से ना रोकें। इसका मतलब ये नहीं है कि जो जैसा भोग करने की इच्छा है उसकी तो भोग करता रहे, जिसको जो भी कार्य काम वासना की इच्छा है तो उसको पूर्ता कर दे, निग्रह किम करिष्यति। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका जो स्वभाव है, आपकी जो प्रकृति है, उसके अनुसार आपको कार्य करना ही है, तो आपको शास्त्र की मर्यादा में रहकर करना है। ऐसा नहीं है कि खुली छूट दे दो हवासों को और बोलो दिल करता है वो करो, फिर तो अपराध ही होगा। लेकिन यदि शास्त्र के अनुसार कार्य करेंगे तो हम अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करके भी अपराध नहीं करेंगे, क्योंकि शास्त्र बोल रहा है। इसलिए भगवान आज के श्लोक में इस चीज को बहुत अच्छे समझा रहे हैं। इंद्रियस्येन्द्रियार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो, क्योंकि इंद्रियों का अपने विषयों में राग और द्वेष स्वाभाविक है। तयोर्न वश मागच्छेत, तो हमें क्या करना है, उनके वश में नहीं आना है। क्यों? तौ यस्य परिपंथिनो, क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। वास्तव में आत्म साक्षात्कार तभी संभव है जब हम अपने गुणों के अनुसार और अपने समस्त नियत कर्मों को संपूर्ण पूरा करेंगे, क्योंकि ये आवश्यक है ना। देखो, रास्ता दिया गया शास्त्रों में, क्या है, एक रास्ता दिया गया कि इस तरह से आप अपने नियत कर्मों को पूरा करो। ना क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के हिसाब से करो, और ना ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के अनुसार, ब्राह्मण वृत्ति के अनुसार, और वैश्य है तो इससे क्या, इससे ये समझ में आता है कि हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता मतलब वो रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है समझो, और दूसरा जो है वो खतरनाक रास्ता है। दूसरे रास्ते पर क्या है, खड्डे हैं, बिच्छू हैं, सर्प हैं, कांटे, वहां से तो गुजरना बहुत खतरनाक होगा ना। लेकिन इसका मतलब ये है कि वहां से अगर हम जाएंगे तो फिर तो संभव ही नहीं है कि हम रास्ते को पार कर सकें। लेकिन अगर रास्ता अच्छा भी है, दूसरा रास्ता अगर अच्छा भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पर अगर ट्रेवल कर रहे हो या फिर गाड़ी चला रहे हो तो बहुत अच्छा हाईवे है, बहुत अच्छा है, सुव्यवस्थित है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर असावधानी से भी ड्राइविंग करोगे तो भी दुर्घटना नहीं होगी या एक्सीडेंट नहीं होगा। आपको सदैव सावधान रहना है, क्योंकि शाही रास्ते पे यानी हाईवे पे भी अगर आप जाओगे तो भी एक्सीडेंट का खतरा तो हमेशा रहता है। लेकिन यहाँ पर रास्ता होना और रास्ता ना होना ये कैसे बताया गया? जैसे रास्ता होना का मतलब होता है हमारी प्रकृति के अनुसार शास्त्र ने जो रास्ता लिया है कि आप क्षत्रिय हो तो आप ये कार्य कर सकते हो। यदि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बताया है श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम अध्याय में 18.42 से लेकर भगवान ने सारे गुणों, सारे जितने भी वर्ण हैं उनके कार्य बताए हैं। ब्राह्मण कैसे कार्य करता है, शमोदमस्तपः शौचम् क्षान्तिराजवमेव च ज्ञानम् विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। शमो अर्थात वो बहुत ही शांति प्रिय होता है, दमन करता है अपने इंद्रियों को, दमन करता है अपने मन को, दमन करता है, तपस्या करता है, पवित्र रहता है, और क्षांति वो उसको यदि उसके साथ कोई अपराध भी करता है तो क्रोधित नहीं होता है,
सहिष्णु होता है, आर्यम सदैव सत्य बोलता है, निश्चय तथा ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य, वो आस्तिक होता है भगवान की यानी कि धार्मिक धार्मिक होता है, और ब्रह्म का ये ब्राह्मण का ये स्वभाव है। तो ये जरूरी नहीं है कि सारे ब्राह्मण भगवान के भक्त हो, लेकिन वो अगर कोई भी ब्राह्मण होंगे तो उनके अंदर ये तो जरूर होंगे गुण कि वो ना वेद पर यकीन रखेंगे, आस्तिक होंगे कि भाई वेद के अनुसार वो कार्य करेंगे। तो ये ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण है। आगे शौर्यं तेजो दीप्ति दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। शौर्य अर्थात वीरता, तेज यानी शक्ति, धीति यानी संकल्प धैर्य, दाक्षता यानी दक्षता, युद्धे चाप्य पलायनम युद्ध में पीछे ना मुड़, मतलब युद्ध में डरकर भागना नहीं बल्कि डटकर खड़े रहना, और उदारता ईश्वर भाव यानी कि नेतृत्व का भाव, क्षत्रिय कर्म स्वभाव उसके अंदर होता है, क्षत्रिय के अंदर ये स्वभाव होता है कि वो ऐसा ही होता है, और वैश्य के अंदर क्या होता है, वैश्य के अंदर रुचि होती है कृषि गौरक्षवाच्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम। यानी कृषि करना, गौ रक्षा करना, व्यापार करना, ये वैश्य का स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों के कर्म क्या है, श्रम, क्योंकि उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती है कि वो अपने से कुछ कर सके। देखो ब्राह्मण का कार्य करने के लिए बुद्धि चाहिए होती है, क्षत्रिय का कार्य करने के लिए भी बुद्धि चाहिए होती है, क्योंकि खुद से डिसीजन लेना है ना, राजा बनना है डिसीजन लेना है, और वैश्य यानी कारोबार करने के लिए और इनकम अर्निंग करने के लिए भी आपको बुद्धि चाहिए। लेकिन जिसके अंदर बुद्धि नहीं होती वो अपना कुछ नहीं कर सकता, वो क्या करता है, वो फिर जिसके अंदर बुद्धि होती है उसकी सेवा करता है। आज का समाज क्या करता है, सबको शूद्र बनाने पर तुला हुआ है, लेकिन ये जो अगर आप अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हो तो भगवान कहते हैं कि जो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहा है वो एक रास्ता है, तो जो इस रास्ते को स्वीकार नहीं करता है तो और अपनी इच्छा से कोई दूसरा रास्ता बना रहा है, यानी कि एक रास्ता दिया है शास्त्र में, भाई आपके अंदर जो गुण है आप उसी अनुसार कार्य करो, लेकिन यदि कोई इस रास्ते को, तो रास्ता बहुत ज्यादा भयंकर होगा, क्योंकि वो तो लिखा हुआ ही नहीं है ना, उसका तो कोई नक्शे में है ही नहीं कि आप अपनी तरफ से कोई रास्ता बना रहे हो, वो कितना ज्यादा खतरनाक होगा। तो इसी भगवान कहते हैं तयोन वश्य मागच्छेत, कि जो राग और द्वेष आ रहे हैं जो, लेकिन उनकी ओर हमें ज्यादा उसके वश में नहीं आना है, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार में आपके लिए बंधन क्रिएट करेंगे, आपके लिए बाधित बनेंगे। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ही समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, वे स्वभाव से भौतिक इंद्र तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, यानी कि उनका वैसे नेचर ऐसा हो जाता है जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, उनको भौतिक इंद्र तृप्ति की कार्यों से उनका स्वभाव, उनको फितरत, उनके नेचुरली वो खींच रहे होते हैं कि नहीं ये कार्य मैं कैसे कर सकता हूँ, इंद्र तृप्ति का कार्य है। किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना न हो उन्हें शास्त्र के यम नियम का पालन करना चाहिए। अब वो तो भौतिक इंद्रियों की तृप्ति के लिए वैसे ही इच्छित नहीं होते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं, कृष्ण भावना भावित होते हैं, लेकिन जो अभी तक कृष्ण के साथ अपने संबंध को निर्माण नहीं कर पाए हैं उन्हें भी अपने इंद्रियों को छूट नहीं देनी है कि हाँ ठीक है जैसा दिल करे वैसा करो, ऐसा नहीं है। शिवपाद जी बोलते हैं उन्हें शास्त्रों के यम नियम का पालन करना चाहिए। कैसे, नियंत्रण इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, अनियंत्रण यानी कि अगर हम
अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करते, शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं कराते हैं, अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण। वास्तव में भोग जो है ना वो कभी बंधन का कारण नहीं बनता, लेकिन उस भोग के अंदर जब आसक्ति हो जाती है ना बहुत ज्यादा, जैसे वो है ना हमारे बंधन का कारण बनता है, क्योंकि वो फिर वो अनियंत्रित तौर पे हम लोग करते हैं। तो उसमें वो जैसे खाना खाना अपराध है, मतलब हमारी आवश्यकता है ना, ये अपराध नहीं है, खाना खाना आवश्यकता है, लेकिन शास्त्र क्या कहता है, यज्ञ शिष्टाशना संतो मुच्यन्ते सर्वकल्पेषु भुङ्क्ते भुञ्जते त्वं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। अगर अपनी इच्छा समझ के खाओगे ना, इंद्रिय तृप्ति का भोग समझ कर खाओगे तो आपको अपराध लगेगा, लेकिन शास्त्र क्या कहता है, पहले भगवान को अर्पण करो फिर जो पसंद लगता है खाओ। उसी तरह यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर हम शास्त्रों के यम नियम का पालन करेंगे तो इंद्रिय विषयों में नहीं फंसेंगे। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी यौन सुख यानी सेक्सुअल लाइफ के विषय में उदाहरण देते हैं कि बद्ध जीव के लिए आवश्यक है, और शास्त्र क्या कहता है, विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है कि आप विवाह करो और एक किसी एक स्त्री का पाणि ग्रहण करके उसके साथ इंद्र तृप्ति कर सकते हो। शास्त्र आदेश के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि आपका स्वभाव है काम वासना तृप्त करना, तो जब जी चाहे जिसके साथ जी चाहे आप कर सकते हो, लेकिन जो शास्त्र ने कहा है उसके अनुसार यदि हम करते हैं तो भगवान क्या कहते हैं 7.12 में, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मी भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है वो तो स्वयं साक्षात मेरा स्वरूप है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं इसलिए अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है, इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनेंगे। ये जो अच्छा लगता है, जो लिखा ना राग द्वेषो व्यवस्थितो, इंद्रियों के अंदर राग और द्वेष होता है, भगवान हर चीज को अत्यंत ही क्लियर करके बताते हैं, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत गीता समस्त शास्त्रों का निचोड़ है, और भगवान पिता की भांति अपने संतान को समझा रहे हैं कि देखो बेटा, आपके हृदय में यदि कोई अपवित्र भावना आती है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उसको पूरा करोगे, आपको शास्त्र के आदेशों अनुसार देखना है कि शास्त्र मुझे इस चीज की इजाजत दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं किंतु इन आदेशों के होते हुए वो मनुष्य के अंदर अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता, उसके हृदय में इच्छा होती है, अच्छा लगता उसको, लेकिन इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, इनको ऐसी चीजों ऐसे हृदय के रुझान जो है, ऐसे हमारे जो विचारधाराएं हैं इनको रोकना होगा, वरना हम आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, बढ़ सकेंगे। ये लिखा हुआ है ना, तव यस्य परिपंथिनो, ये आध्यात्मिक रास्ते में, आपको आध्यात्मिक रास्ते में आगे बढ़ना है तो आपको शास्त्र के अनुसार अपनी जरूरतों को पूरा करना है, इंद्रिय तृप्ति उस हद तक की जाए जिस हद तक आवश्यक है, ऐसा नहीं कि अनावश्यक तौर पर उसको हम बढ़ावा देते रहे कि जब जी चाहे जैसा जी चाहे खाते रहे, जब जी चाहे जो कुत्तों जानवरों की तरह। ये जीवन हमें इसलिए नहीं मिला है, ये जीवन हमें आत्म साक्षात्कार करने के लिए मिला है, तो वो कार्य जो आत्म साक्षात्कार करने में बाधक है उससे यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते दमित करना चाहिए। इसे भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है साफ साफ, तयोन वशम आगच्छे, आपको उसके वश में नहीं आ जाना चाहिए कि आपकी इंद्रियों को ये अच्छा लग रहा है तो ठूसो, आपकी इंद्रियों को ये अच्छा लग रहा है तो देखो, आपकी इंद्रियों को ये स्पर्श अच्छा लगता है तो करो, ऐसे नहीं। जो शास्त्र ने बोला है उसके अनुसार यदि आप कार्य करोगे तो ही आप आध्यात्मिक रास्ते पर आगे निकल सकोगे। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं की को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी कितना सीक्रेट बता रहे हैं कि भले आपको यम नियमों के अंतर्गत पूरी छूट दी जाती है कि ये कार्य आप कर सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इन छूटों के भी नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। समझ आया कि जो शास्त्र के अनुसार आपको रास्ता दिया गया है कि इसके अनुसार आप इंद्रिय तृप्ति कर सकते हो, लेकिन ये मत सोचो कि इसके अनुसार आप यदि करते रहोगे तो आप ना सक्सेस है आपकी लाइफ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुली छूट है आपको, ऐसा नहीं। उसमें भी आसक्ति नहीं रखनी है। मनुष्य को अनासक्त रहकर नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्र तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर देता है। यानी कि अगर आप सही रास्ते पे भी जा रहे हो, शाहरा पे जा रहे हो, एक राजमार्ग पर या फिर हाईवे पे जा रहे हो, तो वहां पर भी तो दुर्घटना और एक्सीडेंट का खतरा होता है ना। तो फिर इसी तरह से शास्त्रों की यम नियमों का पालन करते हुए भी यदि आप इंद्रिय तृप्ति करते हो तो उसके अंदर भी आसक्ति का खतरा होता है, आसक्ति हो सकती है। पथभ्रष्ट आप आध्यात्मिक पथ से पथभ्रष्ट हो सकते हो। इसे श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर वही श्री प्रभुपाद जी मिसाल दे रहे हैं कि जिस प्रकार की राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना होती है, भले ही इन मार्गों की कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए, किंतु इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। कोई आपको ये बोल सकता है कि भाई ये हाईवे इतना परफेक्ट है, इसके अंदर सारी सुविधाएं दी गई हैं, यहाँ पर कभी एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, चाहे तुम आंखें बंद करके गाड़ी क्यों ना चलाओ। नहीं, आपको फिर भी आंखें खोलनी पड़ेंगी। इसलिए बोलते ज्ञान चक्षुषा, अपने ज्ञान की आंखों को सदैव खोलो। और ज्ञान क्या है कि आप ये शरीर नहीं हो, आप शरीर के जो आवश्यकता है ना उनको पूर्ण करने के लिए आप कार्य करते हो, लेकिन ये ज्ञान सदैव याद रखो कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये मेरा अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये मेरी आवश्यकता हो सकती है परंतु ये मेरा गोल नहीं है। मेरा परम सिद्धि क्या है? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। तो जब तक हम आध्यात्मिक चेतना आध्यात्म चेतना नहीं होंगे, तब तक हम इस अपने रियल गोल को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए कहते हैं श्री प्रभुपाद जी कि राजमार्ग पर भी चलो तो आंखें खोल कर चलो, यानी कि नियंत्रण, अगर आप अपने यम नियमों का पालन भी कर रहे हो तो भी कंट्रोल के साथ, नियंत्रण के साथ करना है। ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हो बोला मैं तो भाई सीधा सीधा कर रहा हूँ, अपनी पत्नी से प्रेम कर रहा हूँ, अपने बच्चों से प्रेम कर रहा हूँ, और ये जो मेरा वर्ण आश्रम है उसके अनुसार कार्य करो। नहीं, उसके अनुसार भी कार्य करो, लेकिन शास्त्रों के आदेशों के अनुसार करो, और फिर भी उसके अंदर आसक्ति मत रखो। वास्तव में अपनों में और अपने कर्मों में जो आसक्ति होती है ना, वही बंधन का कारण बनती है। तो हमें कर्म अगर हम अनासक्ति से करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छा समझाते हैं चैप्टर नंबर 15 में, चैप्टर 15 टेक्स्ट नंबर 3, न रूपमसीह तथोपलभ्यते नन्तो न चारे न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेन सुविरूढमूलम् असंग शस्त्री नृढ़ीनचित्वा। कि यह संसार जो एक पीपल का वृक्ष है जिसका मूल ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर है, तो क्योंकि इस संसार में इस प्रकार का कोई वृक्ष दिखता नहीं है, तो ये समझ जाओ कि वास्तविक वृक्ष जो है गोलोक वृंदावन धाम में है, और इस संसार में जो कुछ भी है वो उसी वृक्ष का प्रतिबिंब है। तो हमें क्या करना है? अश्वत्थमेन सुविरूढमूलम, इस अश्वत्थ वृक्ष के जो मूल है, उसका जो जड़ है, उसको काटना है। किससे?
असंग शस्त्रेण दृढ़े न चित्व। असंग के शास्त्र से, अनासक्ति के शास्त्र से, डिटैचमेंट के शास्त्र से, यदि किसी भी चीज में, एक छोटी सी चीज में भी हमारी आसक्ति रह जाएगी तो हम आध्यात्मिक रास्ते पर प्रगति नहीं कर सकेंगे। आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रही है। काफी टाइम से, बहुत बहुत टाइम से भौतिक संगति के कारण हम इंद्रिय सुख की इच्छाओं को पूरा करते रहे, अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी च्युत होने की हर संभावना बनी रहती है। भले आप शास्त्र के आदर्शों के अनुसार कार्य करते हो, लेकिन फिर भी हर समय एक्सीडेंट का खतरा रहता है। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। सबसे बड़ी जो खतरनाक चीज है ना हमारे पास, वो है आसक्ति। तो श्री भोपाल जी बोले, भले आप कार्य करते रहो, भले कोई भी कार्य आप कर रहे हो, सबसे पहले देखो वो शास्त्रों के अनुसार है। अगर शास्त्रों के अनुसार है भी ना, तो भी उसके अंदर भी आसक्ति, यानी पत्नी से प्रेम करो पर आसक्ति रखो, ऐसा बता रहे श्री भोपाल जी। कहते हैं लेकिन कृष्ण भावनामृत में ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेमा भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। अब विरक्ति लाए किधर से जीव, है ना? हृदय में आसक्ति है तो उस आसक्ति को खत्म कैसे करूंगी? हृदय को काटेंगे थोड़ी ना कोई। इसको क्या करना है, उसको अपनी आसक्ति को डाइवर्ट करना है कृष्ण के प्रेम में। यदि कृष्ण से प्रेम हो जाता है तो बाकी सारी चीजों की ओर से आसक्ति स्वतः छूट जाती है। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब जीव को ये रियलाइज हो जाता है कि इससे ज्यादा स्वाद तो सांसारिक किसी और चीज में है ही नहीं, भगवान के पवित्र नाम का स्वाद, भगवान की लीलाओं का स्वाद, भगवान के दर्शन का स्वाद, भगवान के प्रसाद का स्वाद, भगवान के भक्तों की संगति का स्वाद जब आ जाता है तो सांसारिक आसक्ति को दूर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो स्वतः दूर हो जाती है। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेमा भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्य से विरक्ति हो जाएगी, खुद ब खुद छूट जाएगा, आपको कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत में अमृत से विरक्त होने की चेष्टा ना करे। ऐसा नहीं है कि बाकी चीजों से जब आप विरक्ति कर रहे हो तो सोचो कि अभी कृष्ण भावनामृत में भी मेरी बहुत ज्यादा आसक्ति हो गई है तो मैं भगवान के साथ भी थोड़ा नहीं। अच्छा मुझे बताए क्या, हमारे घर में एक लोगो है चलता हमेशा, एक्सेस इन एवरीथिंग इज बैड। तो मुझे हमेशा बोला जाता है, मैं हर चीज में बहुत ज्यादा घुस जाती हूँ, कोई भी कार्य करते ना तो वो ज्यादा ज्यादा चाहिए होता शुरू से। अब क्योंकि भक्ति में भी है ना, शास्त्र में भी ज्यादा ज्यादा अच्छा लगता है, रात को भी दिल करता है बैठ के पढ़ा जाए, आधी रात को भी दिल करेगा अभी उठो, एकदम सन्नाटा है, कोई नहीं है डिस्टर्ब करने वाला, उठो शास्त्र निकालो और पढ़ो। तो यही बोला जाता है मुझे, एक्सेस इन एवरीथिंग इज बैड, आप इतना शास्त्र पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्ति होने की चेष्टा ना करे, क्योंकि यहाँ पर पहले बोला कि कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण भावना भावित होकर या प्रेमा भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्य से विरक्ति हो जाएगी, दुनिया छूट जाएगी कृष्ण से प्रेम करते या कृष्ण के प्रेम की भक्ति के कार्य करने से दुनिया की आसक्ति छूट जाएगी। और यही आसक्ति छोड़ना ही जीव का एकमात्र लक्ष्य है कि भौतिक चीजों से आसक्ति छूट जाए और कृष्ण प्रेम में आसक्ति हो जाए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा ना करे। समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है। कितना अच्छा श्री प्रभुपाद ने बताया कि ये सब आसक्ति को छोड़ना है, लेकिन
इनको छोड़ के ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल विरक्त हो जाओ, किसी भी चीज के अंदर आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। श्री भगवान जी यहाँ पर कितना अच्छा बता रहे हैं कि समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति की विरक्ति का उद्देश्य क्या है, कृष्ण भानामृत के पद पर आसीन हो जाना, कि उसके अच्छे पद पर बैठ जाओ, बस खाली कृष्ण से प्रेम, कृष्ण की जो भी आप कार्य कर रहे हो उसके समय आपकी यही इच्छा कि मैं कृष्ण को प्रसन्न कर रही हूँ, मैं कृष्ण को प्रसन्न कर रही हूँ, मैं कृष्ण को प्रसन्न कर रही हूँ, ये जब भावना आ जाती है तो इसको कहते हैं कृष्ण भावनामृत। और श्री गोपाल जी बोलते हैं सिद्धि क्या है, उद्देश्य क्या है, कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन हो जाना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।